खुदावंद के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो और उसका शुक्र हो कि उसने आज का दिन फिर हमें दे दिया कि इस जमीन पर सांस लेते हुए उस खुदावंद की हम्द और प्रस्तुति करें और उसके सच्चाई के कलाम को अपने दिलों में जगा दें, उसके सच्चाई के कलाम को सुने, क्योंकि वो ही हमारी तारीख राहों में मदद करता है। सो इस बात को याद रखते हुए अपनी सारी तवज्जो को खुदावंद की तरफ लगाएंगे, क्योंकि अब ये वो वक्त है, ये वो बेशकीमती वक्त है, बेशकीमती अनमोल वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम को उसको सुनने के लिए जा रहे हैं और आए हम खुदावंद के हजूर झुकें और अपने अपने दिल की हालत का जायजा लें। किसी तरह की फिक्र, किसी तरह की सोच जो हमें परेशान करती है, उन सारी सोचों, उन सारी फिक्रों, उन सारे ख्यालात को मसीह में कैदी करके खुदावंद की तरफ अपनी तवज्जो लाएंगे। और पहला यूहन्ना पहला बाप उसकी नामी आयत के मुताबिक किसी तरह का भी बोझ है तो अपने बोझ को उसकी तरफ उसे देंगे। सो इस बात को याद रखते हुए खामोशी में चंद लम्हों के लिए झुकेंगे। खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने खानदान के लोग यानी कि शाही लोग बनाया है, शाही काहिन बनाया है कि जब चाहे तेरे पास आ सकते हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस जमीन पर हमें मकसद दिया है और एलची ठहराया है कि तेरी नुमाइंदगी करें और तेरे बारे में जानें और तेरे बारे में बयान करें। और ये हर एक के लिए खुदावंद तूने हक बख्शा है कि इस जमीन पर रहते हुए तेरे बेटे के गवाह बने और उन तमाम नेमतों बरकतों को, तेरी लंबाई, तेरी चौड़ाई और उस गहराई को जाने जो खुदावंद खुदा तू चाहता है कि तेरे ईमानदार उससे वाकिफ हों। सो आज जो कुछ सीखें हम सब के लिए बरकत का बायस हो, और जैसे कि तेरा कलाम बरकत है खुदावंद, इसी तरह मौजूदा कलीसिया के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए जो किसी तरह की भी कश्मकश में हैं, आज के कलाम के वसीला से हिकमत और दनाई दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हमारा बुनियादी हवाला लूका की इंजील उसका 19वां बाप उसकी 11वीं आयत से 27वीं आयत की जो तमसील है, जिसमें से हम सीख रहे हैं खुदावंद के उन गहरे भेदों के बारे में, सच्चाइयों के बारे में जो कि हमारी तरबियत और नसीहत के लिए है। और हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं कि खुदावंद के कलाम में से इस भेद के बारे में, तीन आसमानों के बारे में, कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तीन आसमान हैं। दुनिया में बहुत से लोग सात आसमान कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं। बाइबल मुकद्दस जो कि खुदा का कलाम और अलहाम है, इसकी बुनियाद पर आप पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि तीन आसमान हैं। और इसी बुनियाद पर आप कहते हैं कि हमेशा की जिंदगी यानी कि ना खत्म होने वाली जिंदगी, इसी बुनियाद पर आप कहते हैं कि खुदा का रूह आपके अंदर है, इसी बुनियाद पर आप कहते हैं जो कि खुदा का कलाम है, इसी की बुनियाद पर आप कहते हैं कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। सो ये है खुदावंद के कलाम की बुनियाद, बुनियाद पर हम ये बात करते हैं। सो लूका 19वां बाप उसकी 11वीं आयत से जैसे हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा, मेरे वापस आने तक लेन देन करना, ये है हर एक ईमानदार की शख्सी रूहानी जंग लड़ाई जो कि इंसानों और खून और गोश्त के पुतलों के साथ नहीं, जो कि इंसान है। हमारी जंग इंसानों के साथ नहीं बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ है जो कि आसमानी मकामों में बसी हुई हैं। और इस जमीन पर जब तक हम जीते हैं, यीशु मसीह ने कहा मेरे वापस आने तक लेन देन करना, यानी कि उस रूहानी जिंदगी को, उस रास्तबाजी को जो हमने उससे पाई है, उसमें जिंदगी गुजारना। और हम इस तमसील में देख रहे हैं तीसरे आसमान का मंजर, के आसमान पर यीशु मसीह की अदालत के सामने, या यीशु मसीह ईमानदारों को, ये ईमानदारों की अदालत है जहां पर ईमानदारों को अनाम दिए जाएंगे। और हम इसमें से देख रहे हैं, इसीलिए हमने तीसरे आसमान से का ये मंजर देख रहे हैं, इसलिए हमने इस पर इस मजमून पर मतालिया शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है, सीखना शुरू किया है। और हमने पहले आसमान के बारे में सीखा, कल हमने दूसरे आसमान के बारे में सीखा, और मैंने आपको सिखाया कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दूसरे आसमान पर क्या कुछ हमें नजर आता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं खुलासे के तौर पर, याद दहानी के तौर पर कि कल हमने क्या सीखा। अगर कल कोई बहन भाई ना आ सका, सो आज उसके जहन में, उसके सोच में अंदाजा हो कि कल क्या बातचीत हुई थी कलाम खुदा में से। और ना कि सिर्फ आपके लिए, बल्कि बहुत से लोग जो ऑनलाइन खुदा का कलाम सुनते हैं कंप्यूटर के वसीला से दुनिया के बहुत से हिस्सों में, उनके लिए भी ये बरकत का और रहनुमाई का बायस बनता है। सो पहले आसमान पर हमने देखा कि क्या है, सूरज चांद सितारे। मैंने आपको कहा जब भी आपको बाइबल मुकद्दस में किसी आयात में या किताब में आपको सूरज चांद सितारे आसमान पर नजर आए, तो ये दूसरा आसमान है जिस पर खुदा ने सूरज चांद सितारों को रखा। ये थी पहली बात जिसके हमने हवाला देखा था, पदेश पहला बाप उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक। फिर हमने देखा था पदेश पांच बाप 15 बाप उसकी 5वीं आयत को। फिर हमने जबूर 8 उसकी 3 आयत को देखा। फिर जबूर 136 उसकी 8 और 9 आयत को। फिर यर्मिया 31वां बाप उसकी 35वीं आयत को। और खुदा ने सूरज चांद सितारों को इसीलिए बनाया कि दिन पर और रात पर क्या करें, हुकूमत करें। और हम इन हवाला जात में इस बात को हमने देखा, हमने सीखा। और दूसरी बात वाज़ह तौर पर हम एतमाद के साथ कह सकते हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, मेरे साथ हवाला निकालें। दूसरी बात वाज़ह तौर पर हम देखते हैं दूसरे आसमान पर क्या होती हुई नजर आती है और दूसरे आसमान में क्या है। इफ़सियों 6 बाप उसकी 12वीं आयत को मुताबिक जब हम देखते हैं तो आसमानी मकामों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और इस दूसरे आसमान का हम अंदाजा किस तरह लगाते हैं, जब हम दूसरे आसमान पर अबलीस शैतान और उसकी तमाम बदरूहें और वो नाफरमान फरिश्ते जिन्होंने खुदा की बगावत की और अबलीस के साथी बन गए, उसके क्या बन गए, खादम, उसके पैरोकार बन गए, और किसी तरह की रूहानी जंग को या लड़ाई को या कश्मोकश को या बदरूहों के आने जाने को देखते हैं, तो आसमान का जब आप आसमानी मकामों का लफ्ज देखते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर दूसरे आसमान की बात हो रही है, क्योंकि अबलीस और उसकी फौजें दूसरे आसमान पर सुकूनत परीजा है। और इसी तरह वो पहले आसमान पर और फिर जमीन पर भी क्या करता है, चलता फिरता है, हुकूमत करता है और लोगों को गुमराह करता है। सो आज मैं चाहता हूं कि हम दूसरे आसमान से मुतल्लका सीखें, जैसे मैंने कल आपको सिखाया कि पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं खुदा ने आसमान सूरज चांद सितारों को इसलिए बनाया कि जमीन पर रोशनी डाले, और उसने सब कौमों को सूरज चांद सितारों को दिया। लेकिन उस वक्त बनी इसराइल कौम ने सूरज चांद सितारों को, बछड़ों को और मर्द और औरत और बहुत सी दूसरी छबी को बनाकर उनको प्रस्तुत, उनकी प्रस्तुत, उनकी इबादत करना शुरू कर दी। उनको उन्होंने खुदा माना और गुमराही में पड़ गए। हकीकी सच्चे खुदा को, वाहद सच्चे खुदा को छोड़कर, जिसकी बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि उसने कहा कि ना तो कोई सूरत बनाना जो कि आसमान या जमीन या पानी के नीचे कहीं भी पाई जाए, ना बनाना और ना चांद सूरज सितारों को गुमराह होकर सजदा करना, यानी कि उन्हें खुदा मानना। आज दुनिया भर में बहुत से ऐसे तसव्वुरात और अकीदे पाए जाते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो सच्चे वाहद खुदा को, जो कि बाइबल मुकद्दस का खुदा है, जो सच्चा खुदा है, जो जिंदगी देता है, उससे वाकिफ रखते हैं। और जैसे उस दौर में था आज भी है, और आज बहुत से मसीहियों का मैंने आपको बताया कि यही हाल है। बहुत से मसीहियों ने अपने घरों में बुत, अपने घरों में तस्वीरों को, अपने घरों में बहुत से जानवरों को, बांदरों को, गांवों को और बहुत सी दूसरी चीजों को अपना खुदा बनाया हुआ है। और उनका जो बयान होता है कि खुदा ही ने इन सब को बनाया है, इसलिए इनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें वाजिया तौर पर बताती है कि हमें फरेब नहीं खाना, हमें गुमराह नहीं होना। सो मेरे साथ आज मैं चाहता हूं कि दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:3 से पढ़ना चाहता हूं कि पौलुस रसूल हमें क्या सिखाता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:3-4 में यूं लिखा है, पौलुस कहता है यहां पर, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो, और वो गुनाह का शख्स यानी के हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो जो मुखालफत करता है, और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। यहां पर जिस शख्सियत की बात हो रही है वो है अबलीस, जो अपने आप को खुदा बनाता है, और वो क्या है, अपने आप में खुदा की मानद बनना चाहता है। खुदा अपने आप को जानता है लेकिन वो हकीकत में खुदा की मानद नहीं है। और यहां पर अबलीस जो कि अपने आप को खुदा जानता है, इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। इफ़सियों मेरे साथ चले पिछले हवाला में, इफ़सियों 6:10 से आपके लिए पढ़ूंगा। गर्ज खुदा में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। क्यों हमें उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनने की जरूरत है? वहां पर पौलुस कहता है कि किसी के फरेब में ना आ जाना, क्योंकि अबलीस जो अपने आप को खुदा कहता है, जो अपने आप को खुदा बना लेता है, मबूद कहलाता है, यानी कि वो चाहता है कि उसकी परस्तिश का कोई उसे हक ये मिले कि वो परस्तिश का हकदार ठहरे, अकीदत का, इबादत का, लोग उसे सजदा करें। सो पौलुस यहां पर कहता है, गर्ज खुदा में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। पौलुस का क्या मतलब है यहां पर? जैसा कि आप सीख रहे हैं, गर्ज खुदा में और उसकी कुदरत के जोर में। आपको याद होगा हम इफ़सियों के खत का मतालिया कर रहे हैं, और पहले ही बाप में पौलुस रसूल क्या कहता है। पहला बाप मेरे साथ देखें जरा, उसकी 19 ये किस कुदरत की बात, ये किस जोर की बात पौलुस रसूल कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं हम सीख रहे हैं रूहानी जंग, हमारी जंग, हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं, यानी के इंसानों के साथ नहीं, बल्कि अबलीस और उसके गिराए, उसके वो तमाम फरिश्तों और बदरूहों के साथ है जो के इस जहां के यानी के जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हैं। सो पौलुस यहां पर बात करता है, गर्ज खुदा में मजबूत बनो, और 19 में कहता है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उस बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफिक। सो पौलुस रसूल यहां पर बयान करता है रूहुल कुद्दस की कुदरत जो आपको हासिल है। घबराने की जरूरत नहीं, पौलुस का हरगिज यहां पर मतलब नहीं है कि तुम खाली हाथ लड़ने के लिए चले जाओ, तुम खाली हाथ लड़ने के लिए चले जाओ, जैसे कि दुनिया का मामूल है। जब कोई पहलवान किसी से लड़ने के लिए अखाड़े में उतरता है पहले उसकी तैयारी करता है, जैसे कोई दौड़ने वाला इससे पहले कि वो रेस में भड़े वो उसकी तैयारी करता है। और यही हमारी तैयारी है जो हम सीख रहे हैं اور اس خط کا آپ کو مضمون پتا ہے، تین سادہ سے حصوں میں آپ کو بیان کیا ہے مسیح میں ہماری حالت، اور اس زمین پر مسیح کے لیے زندگی گزارنا، اور تیسری بات چھٹے باب میں ہم دیکھ رہے ہیں مسیح میں قائم رہنا. سو یہاں پر پالوس رسول جس جنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے، جیسے کہ آج ہم سیکھ رہے ہیں، کہتا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، یعنی کہ یاد رکھو کہ تم روح القدس کی قدرت رکھتے ہو، اس قدرت کی تاثیر کے موافق، یعنی کہ روح القدس کی قدرت، تم جو خدا کا مقدس ہو، خدا باپ بیٹا روح القدس تم میں سکونت کرتا ہے. اور یہاں پر پالوس رسول کا جو توجہ ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ تم نے پیچھے کیا سیکھا ہے، اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خالی ہاتھ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے. آپ کو روح القدس کی قدرت، خدا باپ کی محافظت اور مسیح یسوع کا زور حاصل ہے. اور کہتا ہے کہ اس بات کو یاد رکھو کہ خدا کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. کس لیے وہ کہتا ہے مضبوط بنو؟ گیارہویں آیت، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، یعنی کہ اس سچائی کے سب ہتھیاروں کو باندھنے کی ضرورت ہے. اور اس سچائی کے ہتھیاروں سے کس طرح واقف ہوں گے؟ بائبل مقدس کے مطالعہ سے. خدا کے سب ہتھیاروں کو کس طرح جان سکتے ہیں، کس طرح ان کو چلا سکتے ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ دنیا میں معمول ہے، دنیا میں رواج ہے، جب کوئی فوجی کسی جنگ یا کسی میدان میں جاتا ہے وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے کہ وہ مضبوط بنے تاکہ لڑے، اور اسے اس کا ہتھیار چلانے آتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، توپ ہے یا کوئی بھی ہے، وہ اس کے بارے میں سیکھتا ہے. یہاں پر بھی پالوس رسول یہی کہتا ہے کہ مضبوط بنو، یعنی کہ روح القدس کی مموری تمہیں حاصل ہے، اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. ابلیس کون ہے؟ ابلیس ایک وقت میں خدا کے عدن میں، خدا کی حضوری میں وہ فرشتہ تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا، جسے قدرت، جو کہ کامل، جو کہ بہت ہی عمدہ فرشتہ جو کہ خدا نے کبھی بنایا ہو. یہ وہ فرشتہ تھا جسے صبح کا ستارہ کہا جاتا تھا، جسے بائبل یسایہ 14 باب اس کی 12 سے 15 آئے تک صبح کا ستارہ بیان کرتی ہے، یعنی کہ وہ بہت اعلی درجہ رکھتا تھا. اور یہ فرشتہ جو اب ابلیس جسے بائبل کہتی ہے، ایک وقت میں صبح کا ستارہ اور یسو مسیح کے پاس رہتا تھا، اور یسو مسیح سے پیغامات، یسو مسیح کی بات سن کر دوسرے فرشتوں کو بتاتا تھا کہ خداوند کا کیا حکم ہے. اور اس بلیس نے کیا کی؟ اب بغاوت کی، اور اس کی بغاوت کیا تھی؟ وہ مسیح کی ماند، مسیح سے اونچا بننا چاہتا تھا، وہ خود خدا بننا چاہتا تھا، اور وہ خدا اور باپ اور روح القدس کی کیا کرتا ہوا نظر آتا ہے وہاں پر؟ نافرمانی. اس نے تسلیس کا انکار کیا اور اپنے آپ کو خدا بنایا. اور پالوس یہاں پر کہتا ہے کہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. اس کے منصوبے کیا ہے؟ اس کے منصوبے کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک ایماندار گمراہی میں ترتا پھرتا نظر آئے، چلتا ٹہلتا نظر آئے، گمراہی میں، تاریکی میں زندگی گزارے. اور یہی اس کے منصوبے ہیں. اس کا منصوبہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسیح کے اس منصوبے کو پورا نہ کرے جو اس نے تیار کیا ہے، جو آپ میں سے ہر ایک کے لیے خدا رکھتا ہے. اور افسیوں 4 باب اس کی 14 آیت میں پالوس اسی بات کو کہتا ہے. خدا نے پاسٹروں کو، ایمانداروں کو، یعنی کہ چرواہوں کو، مبشروں کو، کلیسیا کو، نبیوں کو اسی لیے خدا نے دیا ہے تاکہ وہ ایمانداروں کو سکھائیں. آپ جو آج کچھ سیکھ رہے ہیں اس لیے ہے تاکہ، پالوس کہتا ہے، تاکہ آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازگیری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرح منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکوں سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں. افسیوں 4:14. اس کی 14 آیت. ابلیس کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم سچی راہ سے واقف نہ ہوں, اور یہی وہ منصوبے ہیں جس کے لیے پالوس کہتا ہے کہ تیار رہنے کی ضرورت ہے, خدا کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی. وہ کہتا ہے تاکہ اس کے مقابلے میں قائم رہ سکیں, کیونکہ ہمیں جس طرح دنیا کی فوجیں لڑتی ہیں خون اور گوشت کے ساتھ, ہمیں اس طرح نہیں لڑنا, بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جب آپ شرارت کی کسی روحانی فوج کو, ابلیس کو, اس کے بدروحوں کو آسمانی مقاموں پر دیکھتے ہیں, تو آپ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسرا آسمان ہے, کیونکہ اس کی تمام فوجیں, اس کی بدروحیں دوسرے آسمان پر اس کے ساتھ بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتی ہیں, اور پھر وہ زمین پر لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں تاکہ لوگ مختلف طرح کی تعلیمات سے ہوا کے اور سمندر کے لہروں کے جھونکوں کی مانند بہکتے پھریں. اور آج ایسا ہی ہے, آج ایمانداروں کی بھی حالت ایسی ہی ہے. تھوڑی سی بائبل مقدس کی تعلیم لی اور بہت سے خدا اپنی زندگی میں بنائے ہوئے ہیں. جیسے کہ ابلیس اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, اس کی بدروہیں اپنے آپ کو چھوٹا خدا کہتی ہیں, اسی طرح بہت دفعہ ایمانداروں کی یہ حالت ہوتی ہے جب ایماندار اپنی من مرضی کرتے ہیں, جیسا کہ ابلیس نے خود پرستی کا گناہ کیا, اپنے آپ کو اب شہوت پرستی کا گناہ کیا کہ میں خدا سے بھی زیادہ اونچا ہو جاؤں, اور اس نے کیا کیا, اپنے آپ کو بلند کیا, اپنے ذہن میں یہ رویہ رکھا. اور 12 آیت اسی بات کو بیان کرتی ہے, کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی. کشتی سے مراد جد و جہد, زور ازمائی, کشمکش, لڑائی, جنگ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکم اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. ابلیس جو کہ روحانی فوجوں سے مراد, یعنی کہ وہ ابلیس جو ایک وقت میں کیا تھا, خدا کی حضوری میں کھڑا ہونے والا, پرستش کرنے والا, عقیدت کرنے والا, اس کی حکم کی فرما برداری کرنے والا فرشتہ, وہ اب کیا ہے, بدرو, اب کیا ہے, وہ جسم نہیں رکھتا بلکہ وہ کیا ہے, روحانی روح ہے. سو اس لیے ہماری جنگ کیا ہے, جسم کے ساتھ نہیں ہے, اور اس بات کو پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ ہمیں جسمانی ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سو میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں اس سے متعلقہ, دوسرا کرنتھیوں اس کا 10:10 اس کی 3 آیت سے. کیا مطلب ہے پالوس کا کہ ہمارے ہتھیار کیا ہے, جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے, اور یہاں پر پالوس رسول اسی سچ کو بیان کرتا ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 10:10 اس کی 3 آیت سے. یہاں پر بھی پالوس رسول اسی سچ, اسی جنگ کے بارے میں بیان کر رہا ہے, کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں, جیسا کہ ہم جسم میں زندگی یعنی کہ جسمانی ہیں, خون گوشت کا بدن رکھتے ہیں, مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں, جسم کے طور پر لڑتے نہیں, اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں, ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار روحانی ہیں, جسے اس نے بتایا کہ خدا کے زور میں مضبوط بنو, خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. اور آپ آگے پڑھ سکتے ہیں خدا کے ہتھیار کیا ہیں. خدا کے ہتھیار کیا ہے, سچائی سے کمر کسنا, پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہننا, ایمان کی سپر لگانا, اور نجات کا کھول لگانا اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لینا اور روح کی معموری میں زندگی گزارنا، یہ ہمارے وہ پوشیدہ ہتھیار ہیں جو ہمیں حاصل ہیں، انہیں چلانا سیکھنا ہے. اور اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ ہم جسم کے طور پر نہیں لڑتے، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. جو قدرت، جو زور، جو ہتھیار آپ کو حاصل ہے، وہ قدرت ابلیس کو بھی حاصل نہیں، شیطان کو بھی حاصل نہیں، جو قدرت آپ کے اندر ہیں. اور یہ قدرت اسی لیے حاصل ہے تاکہ ہم اس زمین پر مسیح کے نام کو جلال، مسیح کی تمجید اور عزت اور اس کی مرضی کو پورا کرنے والے بنیں. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں. ابلیس کا کام کیا ہے؟ تکبرانہ سوچیں پیدا کرنا، ہر طرح کے تصورات کو، ہر طرح کی جھوٹی اور اونچی باتوں کو جو خدا کی پہچان، جو خدا کے خلاف سر اٹھاتی ہے. پالوس کہتا ہے کہ ہم ان سب کو ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قیدی کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. یہ کس لیے پالوس کہتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تاکہ آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازگیری اور ابلیس کے جھوٹ اور غلط تعلیموں کے باعث سمندر کی لہروں کی طرح مکاری کی باتوں اور گمراہی کے منصوبوں میں اور غلط تعلیم کے جھونکوں میں بہکتے نہ پھریں، جیسا کہ آج بہت سے ایمانداروں کا حال ہے. بجائے سچے واحد خدا کو پرستش کا، اپنا عقیدت کا اور اسے عزت کا درجہ دینے کے بجائے خدا کی بھی پرستش کر رہے ہیں اور ابلیس کی بھی پرستش کر رہے ہیں، جن میں بہت سے خدا ان کے گھروں میں آج ایمانداروں کے نظر آتے ہیں. آپ اس سے بخوب واقف ہیں. اگر میں نام گنانا شروع کروں تو آپ اس سے پہلے ہی واقف ہیں. کوئی سفید مائی کو، کوئی کالی کو، کوئی پیلی، کوئی باندر کو، کوئی گاں کو، کوئی کسی کو مانے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم خدا ہی کی پرستش کر رہے ہیں کیونکہ خدا نے انہیں بنایا، غلط بات ہے. اور یہ ہے وہ روحانی جنگ، یہ ہے وہ سارے خیالات، ہر ایک وہ تصور، اس کو قید اور مسیح کا تابع بنانا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم خدا کے زور کو، جو کہ روح القدس کی قدرت ہے، استعمال کریں گے، اس کے ہتھیاروں سے لیس ہوں گے، ہر وقت معمور اور تیار رہیں گے لڑنے کے لیے، کیونکہ ہماری جنگ شرارت کی ان تمام روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. یعنی کہ دوسرے آسمان پر ابلیس سکونت کرتا ہے، جہاں سے وہ اپنی بدروحوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ایمانداروں کو کیا کریں، پریشان کریں، ایمانداروں کی راستوں میں رکاوٹ ڈالے، ایمانداروں کو ازمائشوں میں ڈالے. وہ ازمائش شہوت پرستی کی ہو سکتی ہے، وہ ازمائش نشہ بازی کی ہو سکتی ہے، وہ ازمائش ایک دوسرے سے نفرت کی ہو سکتی ہے، وہ ازمائش ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑھانے کی ہو سکتی ہے، حسد، بغض، لالچ، چوری، نکمی باتوں کی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سب ابلیس کے پھل ہیں. وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور اس کی ایک بادشاہی ہے، جیسے پالوس یہاں پر کہتا ہے، حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس کی کیا ہے؟ ایک بڑی تنظیم ہے بدروحوں کی، اس کے پیروکاروں کی. اور اس کے لیے بائبل مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے. میرے ساتھ دیکھیں دوسرا کرنتھیوں 4:4 اس کی 4 آیت کے مطابق ابلیس کو اس جہاں کا خدا کہا گیا ہے. اور پھر متی 12:12 اس کی 26 آیت کے مطابق آپ کو یاد ہوگا، جب یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں زمین پر تھے تو یسوع مسیح نے ایک اندھے اور گنگے को क्या की, शफा दी और उसमें से बदरूहों को निकाला, तो उस वक्त क्या हुआ मेरे साथ निकाले। मत्ती 12 बाप उसकी 26वीं आयत में हम इस वाकया को देखते हैं। तो वहां पर यसु मसीह ने जब मत्ती 12 बाप उसकी 26वीं आयत से जब देखते हैं, तो उस वक्त यसु मसीह ने एक अंधे और गुंगे को जो जिसमें बदरूहें थी उसको लाया और यसु मसीह ने अच्छा किया और तमाम लोग हैरान हुए और कहा कि क्या ये इब्ने आदम है। और फरीसी जो वहां पर खड़े थे उन्होंने कहा कि ये बदरूहों के सरदार बालबूज की मदद से बदरूहों को निकालता है, बदरूहों को निकालता है। लेकिन यसु मसीह ने कहा मिसाल देते हुए कि अगर अबलीस ही अपने आप खिलाफ उसके अपने खिलाफ हो जाए तो उसकी संतलत उसकी बादशाही किस तरह कायम रहेगी, क्योंकि अबलीस जो अपने आप को खुदा कहता है उसकी हुकूमत है, उसकी फौज है, उसके बहुत से लोग हैं जो उसकी ताबेदारी करते हैं, ना कि बदरूहे बल्कि बहुत से लोगों को उसने क्या किया हुआ, अपना ताबिया बनाया हुआ, अपना कैदी किया हुआ है। और इस बात को याद रखें, अबलीस ईमानदारों को बहका सकता है, उनकी सोचों में झूठ डाल सकता है, उन्हें फरेब दे सकता है, उन्हें गुमराह कर सकता है झूठों के बायस, लेकिन उनके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अबलीस की कोई बदरू आपके अंदर दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि आप रूहुल कुद्दस का मकदस हैं। अगर आप देखें किसी को कोई बदरू से पुर है, तो आप इसका अंदाजा बाइबल मुकद्दस के बदयात पर लगा सकते हैं कि ये ईमानदार नहीं है। बदरू ईमानदारों के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि ईमानदारों पर रूहुल कुद्दस की मोहर लगी हुई है और उस मोहर को कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि खुदा सबसे ज्यादा कुदरत वाला है। सो यहां पर उस आदमी से जब यसु मसीह ने बदरू निकाली, तो यसु मसीह ने कहा कि अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो वो आप ही तो वो अपना मुखालिफ होगा, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी। अबलीस की क्या है, एक बादशाही है जिसका वो हाकम है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और बदरूहें उसकी बातों को मानती हैं और उसकी मर्जी को पूरा करती हैं। और हम जानते हैं जब यसु मसीह बियाबान में अजमाया गया, तो शैतान ने यसु मसीह को अपनी बादशाही में से क्या की थी, ऑफर की थी, उसे दावत दी थी। जब हम लूका उसका 4 बाब पढ़ते हैं, तो आप इस वाकया से वाकिफ होंगे कि जब यसु मसीह रूहुल कुद्दस से भरा हुआ जर्दन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में रहा और अबलीस ने उसे अजमाया, और उन दोनों में यसु मसीह ने कुछ ना खाया, और जब दिन पूरे हो गए, तो 3 आयत में लिखा है लूका 4 बाप उसकी 3 आयत में, और अबलीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटियां बन जाएं। आप जानते हैं यसु मसीह ने कहा कि आदमी रोटी ही से जीता ना रहेगा। और 5 आयत में अबलीस ने यसु मसीह को यह दावत दी अपनी बादशाही में से कहा, और अबलीस ने उसे ऊंचे और अबलीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब संतलत पल भर में दिखाई, यानी कि अपनी सारी शानो शौकत, अपनी हुकूमत, अपना इख्तियार दिखाया, और उससे यानी यसु से कहा कि ये सारा इख्तियार और उसकी शानो शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहूं मैं देता हूं, अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। आज हम इस यहां पर देख सकते हैं इस बात में कि उसने यसु मसीह को धोखा देने की, यसु मसीह को ये दावत दी कि मेरी जो बादशाही आरजी है उसको मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, अगर तू मुझे सजदा करे, वो सारो शानो शौकत, सारा इख्तियार। और आप जानते हैं कि यसु मसीह कुल इख्तियार रखता है। अबलीस अपने आप को इस जहां का खुदा, जैसे कि बाइबल कहती है, वो इस जहां का खुदा, इस तरीकी के हाकम, उसे तरीकी का हाकम यानी के गुनाह का वो क्या है, नुमाइंदा है, गुनाह करवाने वाला है, वो कातिल है, वो झूठा है, वो अपने आप को खुदा कहता है और उसकी बादशाही अबदी नहीं है, जैसा कि हम खुदा में देखते हैं। खुदा की जब हम 10 सिफात को देखते हैं, खुदा की 10 जात की उन आला बातों को देखते हैं जो के जिनकी फोटोकॉपी, जिनको जिनकी नकल अबलीस करता है, जैसा कि अबलीस अपने आप को कहता है कि वो हाकम है, लेकिन उसकी हुकूमत क्या है? आरजी है। और खुदा बाप की हुकूमत क्या है? यीशु मसीह की हुकूमत क्या है? अबदी है। जैसे कि अबलीस कहता है कि मैं रास्तबाज हूं, लेकिन उसमें नारास्ती पाई जाती है, और खुदा क्या है? रास्तबाज है, यानी कि मुकम्मल रास्तबाजी, उसमें कोई भी गुनाह नहीं पाया जाता और अबलीस में गुनाह पाया जाता है। खुदा आदल और इंसाफ पसंद है, यानी कि वो हर हालात से दुरुस्त है, उसमें कोई गलती, उसमें कोई भी धोखाबाजी नहीं पाई जाती, और अबलीस क्या है? धोखेबाज है। खुदा मोहब्बत है और अबलीस में नफरत ही नफरत भरी हुई है। खुदा अबदी जिंदगी है और अबलीस क्या है? आरजी है, उसका आखर है, वो एक दिन आग की झील में डाला जाएगा। जैसे कि खुदा अबदी है, अबलीस अबदी नहीं है। जैसे खुदा तमाम कुदरत रखता है, अबलीस को तमाम कुदरत हासिल नहीं है। जैसे खुदा हर जगह मौजूद है, अबलीस हर जगह मौजूद होने की कुदरत नहीं रखता। अबलीस एक वक्त में एक ही जगह हो सकता है, और उसका जो बड़ा निजाम है बदरूहों का, उसकी बदरूहें मुख्तलिफ जगह पर जाके काम करती है। अबलीस सिर्फ एक जगह रहकर एक वक्त में काम करता है, लेकिन खुदा हर जगह मौजूद है। अबलीस को कुल इलम नहीं है, लेकिन खुदा सब कुछ जानता है। खुदा अब्दियत से लेकर आखिरत तक सब इलम रखता है, कुल इलम रखता है। अबलीस को कुल इलम नहीं है। अबलीस बार बार क्या होता है? तब्दील होता है, अपनी सूरतें बदलता है, अपना रवैया बदलता है, कायम नहीं रहता, लेकिन खुदा तब्दील नहीं होता। उसके वादे और उसके नेमते जो उसने दी हैं, वो ला तब्दील है, यानी कि उसमें कोई भी तब्दीली नहीं पाई जाती। अगर वो हमें हमेशा की जैसे उसने जिंदगी दी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं, वो हमसे छीनेगा नहीं। खुदा जैसे के सादक है, यानी के सच्चाई है, उसमें कोई भी झूठ नहीं पाया जाता। खुदा जो कुछ कहता है वो क्या है? बिल्कुल दुरुस्त और हक और सच्चाई है, लेकिन अबलीस में सच्चाई नहीं पाई जाती, वो झूठा है। और यहां पर आप मुवाजना कर सकते हैं कि खुदा जो के अबदी है, सच्चा है, रास्तबाज है, तमाम इलम रखता है, कुल कुदरत रखता है, तब्दील नहीं होता, रास्तबाज है, इंसाफ पसंद है, कुल हिकमत रखता है, मोहब्बत है, ये बातें अबलीस में नहीं पाई जाती। अबलीस अपने आप को खुदा का हम शक्ल बनाना चाहता है, लेकिन खुदा जैसी जात उसमें पाई नहीं जाती। उसका ये काम है कि लोगों को गुमराह करे, ताकि लोग उसकी उस झूठी शानो शौकत के ताबिया हो, जैसा कि उसने यीशु मसीह को कहा कि सिर्फ तुझे मुझे सजदा करने की जरूरत है, मैं दुनिया की सारी चीजें तुझे दे दूंगा। आज बहुत से ईमानदारों का यही हाल है। आज आप देख सकते हैं कि अबलीस के पैरोकार और अबलीस की प्रस्तुति करने वाले लोग आपको बहुत ज्यादा जगते मगते और चमकते हुए नजर आएंगे इस तारीकी के जहां में उनकी शानो शौकत बहुत नजर आएगी। याद रखें, इन आरजी चीजों की तरफ ना ध्यान करें, बल्कि आलमे बाला की चीजों की तलाश में ध्यान में रहें। आसमान पर जो आपके लिए खुदा की हजूरी में जगह तैयार की है खुदावन ने, वो अनमोल है। और ये जंग जो हम लड़ रहे हैं, इसमें जानने की जरूरत है कि खुदा में और अबलीस में क्या फर्क है, और हमें सिर्फ वाहद सच्चे खुदा की प्रस्तुति करनी है, ना कि इन झूठे खुदाओं की जिन्होंने अपने आप को खुदा बनाया है। और मैं इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूं क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से बांदरों और बहुत से बछड़ों और बहुत से घास फूस खाने वाले मरदूदों की इबादत की है, मैंने वक्त गुजारा है। लेकिन हमें हर रोज अपने जिंदा खुदा की परस्तिश करने की जरूरत है। मैंने बहुत से मुर्दों की इबादत की है, बहुत से और मबूदों की इबादत की है, लेकिन कोई हकीकी सच्चाई नहीं पाई जाती। ये सब झूठ और आरजी है, लेकिन खुदा वाहद जो के बाइबल का खुदा है अब्दी है। और ये है हमारी रूहानी जंग, और इस रूहानी जंग के लिए हर रोज तैयार रहना है, खुदा के जोर में उसकी कुदरत में मजबूत बनना है, उसके हथियारों को पहनना है। और ये दूसरे आसमान पर के जो मखलूक है, जो के शरीर अबलीस है, उसकी बदरूहें हैं, उसके फरिश्ते हैं, वो चाहते हैं कि ईमानदार सब कुछ करें, ईमानदार बड़े दिन पर कपड़े पहने, ईमानदार ईस्टर पर बड़ी सलीब उठाकर सड़कों पर लिटें, ईमानदार बहुत से बरूपीय काम करें, रासबाजी के बहुत से जतन करें जब कोई त्यौहार आए। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का वक्त आए, तब ईमानदारों को वो चाहता है कि गुमराही में रहें, ताकि कोई सच से वाकिफ ना हो। क्योंकि जब हम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई हमें आजाद करेगी। ये आने वाले त्योहारों के लिए जो के खुदा ने हमें दिए हैं कि उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसका बेटा इस दुनिया में आया, उसकी शुक्रगुजारी करें कि सलीब पर उसने जान दी, बजाय शुक्रगुजारी के वो चाहता है सिर्फ इन रस्मों ही में, इन रिवाजों में, इन दिनों में, इन ईदों में मसरूफ रहें और बाइबल मुकद्दस को ना पढ़ें। आज मसीही ईमानदारों की जिंदगी में जो सबसे बड़ा धोखा, क्यों ईमानदार खा रहे हैं, बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते। बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की, बाइबल मुकद्दस की तालीम को बहुत कम तवज्जो दी जाती है। इसीलिए आज बहुत से खुदा, किसी ने अपने खुदा को तकड़ी में रखा हुआ है, किसी ने अपने खुदा को चूल्हे में रखा हुआ है, किसी ने अपने खुदा को बहुत सी और बातों में रखा हुआ है, ये वो सब अबलीस की तस्वीरें और झूठ और गुमराही हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो बाइबल कहती है कि वाहद एक खुदा है जिसने आपको पैदा किया है, और वही आपकी परस्तिश, अकीदत और इज्जत और सजदे का हकदार है। फैसला हर रोज ईमानदारों को करने की जरूरत है। अहम खुदावंद के जूर चुके हैं। खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो इस सारे कड़वे कलाम के लिए, इस सारी गहराई के लिए, खुदा बाप इस सारी जंग के लिए। रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में हमें कबूल करने की और इसमें जिंदगी बसर करने की कुव्वत और ताकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।